ओम शांति। आदरणीय शीलू दीदी जी का एक हाथ हिलाकर अभिनंदन करेंगे। '84 से '91 तक जब हम ज्ञान में चले, रेगुलर क्लास करने लगे, तो पहली रिकॉर्डेड राजयोग कमेंट्री हमने शीलू दीदी की ही सुनी थी। और जैसे सुनते रहे 85, 86, 87 में जब मधुबन आए तो ओम शांति भवन में क्लासेस होती थी। पहली बार आके मैं ढूंढती रही वो दीदी कहाँ है जिनकी इतनी मीठी मीठी आवाज में कमेंट्री है। तो इतनी मीठी आवाज की ध्वनि, बहुत अच्छे चिंतन और बहुत अच्छी सेवा भावना, जिससे आपने अपने देश में ही नहीं अपितु बहुत बहुत विदेशों में, लगभग सारे सारे वर्ल्ड में, सारे ग्लोब पर जाकर भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा की है, ऐसे आदरणीय शीलू दीदी जी का हम दिल से स्वागत करते हैं। पहली बार कमेंट्री भी आपकी सुनी, पहली बार ब्रह्मा कुमारीज को जी टीवी पर देखा तो भी आपको ही देखा, और उसके बाद तो, और पहली बार जब बाबा मिलन से पहले क्लास सुनते थे जो आजकल सूर्य भाई कराते हैं, तो ओम शांति भवन में शीलू दीदी कराते थे। अव्यक्त मिलन का आनंद कैसे लें, तो पहली बार क्लास भी आपसे ही सुनी थी, इसीलिए बचपन से ही आपसे हम दिल से बहुत अच्छे से जुड़े रहे और बहुत सी चीजों की, बहुत सी धारणाओं की प्रेरणा आपसे ली। मधुबन में 3-3 महीने सेवा में रहते थे, नजदीक से देखते थे, उनके कमरे के सामने वाले कमरे में ही हम कुमारियां रहती थी, तो बहुत नजदीक से एक एक चीज देखते थे। उनका स्वच्छता रखने का तरीका, उनका चलने का, बोलने का, सब चीजों की विधि, तो ऐसे अपने हर चीज से, अपनी हर विधि से आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत रही। अनगिनत कुमारियां आपके जीवन से प्रभावित हुई और जीवन समर्पित किया। तो आदरणीय शीलू दीदी, साकार बाबा मम्मा की पालना आपने ली हुई है, आप मुंबई से ज्ञान में चल के और एक सिंधी परिवार की होते हुए बाबा के घर मधुबन में ही आकर बैठ गए। बाबा ने आपको हर की पौड़ी की गंगा कहकर यहीं रखा। अनगिनत वीआईपीज यहाँ आते हैं, उनकी सेवा आपने यहीं बैठकर करनी है, तो आपको बाबा ने अपने दिल तख्त पर, जो चूल पर सो दिल पर, बिल्कुल अपने चूल्हे के पास और अपने दिल के पास रखा मधुबन पांडव भवन में। अभी आप ही और आदरणीय शशि दीदी, ये बहने ही पांडव भवन की सब एक्टिविटीज को संभालते हैं। वैसे शीलू दीदी जी से आज हम सुनेंगे रूहानियत अपने जीवन में कैसे बनाए रखें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल भी आप सबसे मुलाकात हुई और आज दोबारा आपसे मिलने का मौका मिला है, तो इसलिए हमें बहुत खुशी है इतनी सारी कन्याओं से मिलकर। तो जब आज सुबह शारदा दीदी ने मुझे कहा कि आज शाम को भी आप क्लास कराएंगे, तो मैंने बहुत सहज रूप से बिना सोचे कह दिया, मैंने कहा क्यों नहीं, कन्याओं से मिलने का तो ये कितना बड़ा सौभाग्य होगा हमें, तो इसीलिए दोबारा आपके पास आ गए। और बहुत सुंदर विषय पर हमें कहने लिए कहा है, जीवन में रूहानियत कैसे आए। क्योंकि हम सभी ब्राह्मण बच्चे देवता बनने वाले हैं, ये हमारा लक्ष्य सबसे पहले पक्का हो। हमको देवता बनना है और ये हमारा लक्ष्य है, और उसके लिए बाबा ने हमें चार विषय दिए हैं। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो विषय होते हैं, जिस लक्ष्य को पाना है उस अनुसार विषय होते हैं। डॉक्टर बनना है तो मेडिसिन से संबंधित विषय होते हैं, वकील बनना है तो वकालत के अनुसार विषय होते हैं, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग के रूप में उसके ही अलग विषय होते हैं। अब यहाँ पर लक्ष्य है हमारा देवता बनना है, तो देवता हम किसको कहेंगे? हम मंदिरों में देवताओं की मूर्तियां देखते हैं, उनमें कितनी रूहानियत है, जितना ही उनके चेहरे पर सुंदरता है, आकर्षण है, उतनी ही गहरी रूहानियत है, उनकी आंखों में रूहानियत है, उनके खड़े होने में भी रूहानियत है, कितनी सभ्यता है, मानो रूहानियत की झलक अगर देखनी हो तो लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखो। तो जैसे हम उनके चित्र को देखते हैं, उनकी ड्रेस, उनकी आंखें, उनका खड़ा रहना भी कितना आकर्षणमय होता है, परंतु कितना रूहानियत भरा। तो क्या उनमें ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण वो विश्व के मालिक बने? आज भी बाबा ने कहा कितने समझदार थे वो, फिर भी ये ज्ञान नहीं था, पर बहुत समझदार थे तब तो विश्व पर राज्य कर लेते थे। और हमें तो ये ज्ञान भी है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमें। लक्ष्य भी कितना ऊंचा है, दुनिया में जो लक्ष्य रखते हैं वो तो विनाशी है। चलो आज डॉक्टरी डिग्री मिली, MBBS पास किया, कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुई, सर्टिफिकेट मिल गया कि अब ये डॉक्टर बना, लेकिन अचानक रोड क्रॉस कर रहा था और एक्सीडेंट हो गया और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। मान लो अब वो डॉक्टरी सर्टिफिकेट अगले जन्म में ले जाएगा, क्या करेगा? वो सर्टिफिकेट वहीं का वहीं रहा, फिर अगले जन्म में उसको ABCD फिर से पढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 फिर से सारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, ये जो तुम पढ़ाई पढ़ते हो ये ईश्वरीय पढ़ाई, रूहानी पढ़ाई, इसकी प्रारब्ध तुम जन्म जन्म पाते हो, ये अविनाशी पढ़ाई है, ये संस्कारों में आ जाती है, और वो संस्कारों में आने के कारण वही पद हम भविष्य में पाते हैं। क्योंकि कौन पढ़ा रहा है हमें? स्वयं भगवान। और देवता बनने के लिए ये चार विषय बाबा ने दिए हैं, ईश्वरीय ज्ञान, सहज राज योग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा, ये चार विषय है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं जब भी ये चार विषय सुनाओ तो ऐसे नहीं कहो ज्ञान योग धारणा सेवा, नहीं, क्योंकि ज्ञान तो दुनिया में बहुत है। अगर कोई कहे ज्ञान तो कौन सा ज्ञान, बहुत ज्ञान है दुनिया में। किसी को कारपेंटरी का भी ज्ञान कहेंगे ना, कैसे फर्नीचर बनाना होता है, उसका भी ज्ञान है। कई स्किल्स, कई कलाएं सीखते हैं, वो भी, इसका भी ज्ञान चाहिए। लेकिन यहाँ कौन सा ज्ञान मिलता है, हम कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान। किसको कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान, जिसको दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। ये सांसारिक ज्ञान नहीं है, राजनीति का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, कैसे कोई विशेष स्किल आ जाए उसका ज्ञान, वो तो संसार में बहुत है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो सबसे ऊंचा ज्ञान है, तो आध्यात्मिक ज्ञान किसको कहेंगे। आध्यात्म इस शब्द में ही वो ज्ञान समाया हुआ है। आध्यात्म अर्थात आत्मा का अध्ययन, वो आध्यात्म है। आध्यात्म आत्मा, जो आत्मा का अध्ययन होता है जहाँ, वो आध्यात्मिक ज्ञान है। क्योंकि शरीर का ज्ञान भी बहुत है, इसको फिजियोलॉजी कहते हैं। एक एक अंग का भी ज्ञान है, एक एक शरीर के अंग का कितनी जानकारी मिलती है वो भी ज्ञान है, इसको फिजियोलॉजी कहते हैं। फिर मन की कई भावनाएं हैं, उनका भी ज्ञान है, जिनको साइकोलॉजी कहते हैं। इतिहास का भी ज्ञान है, कौन कौन राजाएं होकर के गए। फिलॉसफी भी बहुत है संसार में, कई प्रकार के विषय है दुनिया में। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं आत्मा का ज्ञान है, जो आत्मा से रिलेटेड बातें हैं उसका ज्ञान है। और क्या होता है आत्मा से रिलेटेड ज्ञान, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस संसार में, जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें जाना कहाँ है, ये ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। फिर आत्मा से रिलेटेड जो और बातें हैं, आत्मा का पिता कौन है, परमात्मा, उसका ज्ञान। फिर आत्मा इतने ऊंचे प्राप्ति को पाए उसके लिए ज्ञान, कर्मों का ज्ञान। परमात्मा का ज्ञान भी कितना ऊंचा है, जिनको दुनिया ढूंढ रही है वो हमें पता है कौन है परमात्मा। कर्मों का ज्ञान, मनुष्यों को नहीं पता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, किस कर्म का क्या फल है, कैसे वो फल मिलता है, कैसे हम क्या कर्म करें जो हम सुख शांति को प्राप्त करें, कुछ पता नहीं है। तो कर्मों का ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है ये, जिसको बाबा कहते कर्म की गति। कर्म की गति क्या है, दुनिया में कहा जाता है कर्म की गति बड़ी बलवान है। साधारण इंसान कर्म की गति को समझ नहीं सकता है, इसलिए उसके मन में प्रश्न उठते हैं, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, क्यों क्यों का जो प्रश्न उठता है, इसका मतलब उनको पता नहीं कर्मों का ज्ञान। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे ही कर्म का फल है, ये नहीं समझते हैं। इसने ऐसे किया, क्यों किया, क्या किया, उसी उधेड़ बुन में ही रहता है, अपने आप को दुखी कर देता है। तो कर्मों का ज्ञान, फिर है समय का ज्ञान, कौन सा समय चल रहा है, क्योंकि अगर समय का ज्ञान नहीं होगा तो समय अनुसार हमें क्या करना है वो भी पता नहीं चलेगा और हम अपने जीवन में बहुत धोखा खा सकते हैं, क्योंकि समय पर वो नहीं किया। इसलिए अब कौन सा समय चल रहा है सृष्टि चक्र के अंदर, तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्म गति का ज्ञान, समय का ज्ञान, काल चक्र का ज्ञान, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान है। और बाबा कहते हैं ये ज्ञान इस समय सब लुप्त है, किसी के पास भी नहीं है। मांगते जरूर हैं, परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं ज्ञान के लिए। कहते हैं ना, असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से निकाल, सत्य की ओर ले जाओ। तो कौन सा ज्ञान असत्य से निकाल, सत्य की ओर ले जाता है, वो ज्ञान। विज्ञान तो हमें प्रकृति का ज्ञान देता है, और प्रकृति तो परिवर्तनशील है। आज कोई भी हाइपोथेसिस बनाते हैं कि किसी के बारे में भी प्रकृति की कोई भी एक खोज उन्होंने की या कुछ किया, उन्होंने कुछ पाया, इक्वेशन पाया, लेकिन कल उसको निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, कहेंगे नहीं नहीं वो गलत था। आज किसको जिसको हाँ का कल गलत कहेंगे, क्योंकि रिसर्च ही चल रहा है। लेकिन ज्ञान माना जो एक बार है तो है, वो बदल नहीं सकता है, उसको ज्ञान कहेंगे। तो किसका ज्ञान, इसलिए ज्ञान माना सत्य, सत्य की पहचान। और सत्य क्या है, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान ये सत्य ज्ञान है। जो चीज परिवर्तनशील है वो अध्यात्म में असत्य है। विज्ञान कहता है कि जो दिखाई देता है वही सत्य है। ये पंखा दिखाई देता है सत्य है, ये दिखाई देता है ये सत्य है। और अध्यात्म कहता है जो दिखाई देता है ना इन आंखों से, वो सब असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि सत्य की परिभाषा ही अलग है अध्यात्म में। इसलिए कहा जगत मिथ्यम, जगत को मिथ्या कहा, असत्य कहा। और ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्यम, तो ब्रह्म को ईश्वर कह देते, हालांकि ब्रह्म भी सत्य क्यों नहीं है। तो क्या है सत्य की परिभाषा, जो अपरिवर्तनशील हो, जो नित्य हो, जो कभी बदलता न हो, जो सदा स्थिर हो, एक रस हो, अनादि हो, अविनाशी हो, वो सत्य है। और जो बदलता रहता है वो सब असत्य है। तो इसीलिए विज्ञान और अध्यात्म इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। विज्ञान कहते हैं जो दिखाई देता है वो सत्य है, और अध्यात्म कहते हैं जो दिखाई देता है वो सब असत्य है, कॉन्ट्रडिक्शन। इसीलिए आइंस्टाइन ने क्या कहा, दोनों को मिलाओ, क्योंकि अति भावना में भी नहीं बहकना है, क्योंकि आप उसके लिए क्या प्रूफ देंगे, आत्मा को देख तो सकते नहीं है, न किसी मशीन से उसको मेजर कर सकते हैं। तो कई कहते क्यों नहीं दिखाई देती आत्मा, सब कहते कैसे दिखाई देगी, ये आंखें तो चर्म चक्षु है, ये प्रकृति की आंखें हैं। तो जो प्रकृति की चीज है वो जो प्रकृति की चीज नहीं है उसको कैसे देख सकती है, आत्मा तो प्राकृतिक है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति की हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज। शरीर कितना परिवर्तनशील है, बच्चा है, फिर युवा बना, फिर वृद्ध बनेगा, एक दिन खत्म, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, अस्तित्व उसका खत्म। कितना कितना असत्य है ये, लेकिन आत्मा सत्य है। एक कहानी सुनाते, शास्त्रों की कहानी है, अष्टावकर की कहानी, राजा जनक की कहानी। तो राजा जनक का जो गुरु था वो अष्टावकर था। अष्टावकर, उसको शरीर पर 8 कुब थे, बड़ा कुरूप था वो, लेकिन राजा जनक ने उसको गुरु बनाया था। उसका ज्ञान बहुत श्रेष्ठ था, जो बताते हैं। तो एक दिन राजा जनक को स्वप्न आया, उस क्योंकि राजा ही में रहता था, और अष्टावकर ने जो उनको ज्ञान दिया था सेकंड में जीवन मुक्ति का, है और नहीं है संसार में, बाबा जो कहते हैं ना, एक सेकंड में जीवन मुक्ति, इसका ये ज्ञान अष्टावकर ने जनक राजा को दिया था। क्योंकि राजा जनक ने पूछा अष्टावकर से, मुझे एक सेकंड में जीवन मुक्ति चाहिए, एक सेकंड में जीवन मुक्ति। तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसने दरबारियों को बिठाया, बड़े ज्ञानी विद्वान थे, किसी ने नहीं जवाब दिया सही जवाब उसको, जो उसको पसंद आए। आखिर अष्टावकर ने उनको ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? एक शब्द का ज्ञान, एक सेकंड का ही चाहिए, तो वो एक सेकंड क्या है और नहीं है। वो घोड़े पर चढ़ रहा था, घोड़ा एक पांव घोड़े पर था, एक पैर धरती पर था। तो इतना ही पूछा, राजन आप कहाँ हो, घोड़े पर हो या धरती पर हो? अब एक पैर घोड़े पर था, एक पैर धरती पर था। तो राजा ने कहा घोड़े पर हूँ, लेकिन धरती पर भी पांव था। तो कहा धरती पर हूँ, अब घोड़े पर भी पांव था, तो घोड़े पर था या धरती पर था? अभी चढ़ ही रहा था, हाथ घोड़े पर था, एक पैर घोड़े के वो सैटल पर था। तो राजा जनक को अष्टावकर ने कहा बस यही एक सेकंड में जीवन मुक्ति है, हैं और नहीं है, हैं और नहीं है, घोड़े पर हैं और नहीं है, धरती पर हैं और नहीं है, संसार में है और संसार में नहीं है, नाव पानी पर है लेकिन पानी नाव में नहीं है। क्योंकि पानी अगर नाव में चला जाएगा तो नाव डूब जाएगी, नाव पानी पर होगी तो चाहे कितना भी उस पर वजन होगा वो डूबेगी नहीं, वो डूबेगी तब जब पानी नाव में आ जाता है। अगर पानी पर नाव है तो पार हो जाएगी, पर पानी नाव में आ गया तो पार नहीं होगी, डूब जाएगी। तो जीवन भी एक नैया है, अगर संसार इस जीवन के अंदर आ गया ये नैया डूब जाएगी जीवन की। तो संसार में भले रहो, बाबा मना नहीं करते हैं, घर गृहस्थ में रहो मना नहीं करते बाबा, परिवार वालों को तो यही कहते हैं ना, अपनी जिम्मेदारी संभालो, आपके बाल बच्चे कौन संभालेगा, आपको ही संभालना है, जिसने रचना रची है उसी को पालना करनी है। लेकिन कैसे रहो, ट्रस्टी होके रहो, ये मेरा नहीं है बाबा का है। तो कहानी है कि राजा जनक को ये ज्ञान तो था, इसलिए वो बहुत ट्रस्टी था, एकदम ट्रस्टी, इतने बड़े महल में रहता था, लेकिन उसको कोई मोह नहीं था उस महल का। तो एक दिन उसने स्वप्न देखा, और क्या देखा उस स्वप्न में, कि दूसरे राज्य का राजा उसके ऊपर चढ़ाई की, राजा जनक पर, और इसका राज्य छीन लिया। ये स्वप्न देखता है, राज्य छीन लिया, और राज्य छीन करके उस राज्य के सिपाही राजा जनक को पकड़ लिया, और जिस राजा ने उन पर चढ़ाई करके राज्य छीन लिया उसके पास राजा जनक को ले आए। तो राजा जनक से वो राजा पूछता है, ये सब स्वप्न में देख रहा है, राजा जनक से वो राजा पूछता है, अभी तुम्हारी ये राजाई नहीं रही, मैं इसका राजा हूं, तो मैं तेरे साथ कैसा व्यवहार करूं? तुम अभी राजा नहीं रहे इस राज्य के, तो कैसा व्यवहार करूं? अब राजा जनक में तो सन्यासी के ख्यालात थे। उसने कहा, राजन ले लो ये राजाई, मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे जंगल में भेज दो, मैं वहां तपस्या करूंगा, मुझे तो वही पसंद है, क्योंकि संस्कार तो उसके थे ही, भले राजाई में था, तो मुझे जंगल में भेज दो। तो उस राजा ने अपने सिपाही को कहा कि इसको ले जाओ जंगल में, इसको पहुंचा दो। तो वो सिपाही के साथ जा रहा है, सब स्वप्न में देख रहा है, और जा रहा है तो उसको भूख लगी, तो उस सिपाही के पास जो रोटी होगी रखी होगी अपने भोजन के लिए, कहा मुझे भूख लगी है, पता नहीं जंगल में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर आपके पास कोई रोटी हो तो हमें दो। तो उस पर उस सिपाही को दया आ गई, अब ये राजा और रोटी मांग रहा है, तो अपनी रोटी से उसको थोड़ा हिस्सा दिया। तो ये अपने मुंह पर रख ही रहा था, अभी तक मुंह में डाला नहीं था, तो एक चील होता है ना ईगल, वो चील आकाश से उड़ता हुआ एकदम नीचे आया, उड़ता हुआ आया उस रोटी को देख के, और एकदम से उसके हाथ को उस पर हाथ पर झापड़ मार कर जैसे रोटी छीन ली, और जैसे ही उसको लगा उसके पंजे उस चील के, उसी वक्त उसकी आंख खुल गई राजा जनक की, और चारों ओर देख रहा है, बहुत सुंदर महल, उसका कमरा इतना सुगंधित, इतना सुंदर, सब कुछ इतना सुंदर, कोई राजा ने चढ़ाई नहीं की है, कोई उसकी राजाई गई नहीं है, कोई उसको भूख नहीं लगी है, कोई वो जंगल में नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं है, वो तो अपने शेष सैया पर सोया हुआ है। तब उसके मन में प्रश्न उठा कि सत्य क्या है, ये जो मैं अभी हूँ ये सत्य है, यह जो स्वप्न मैंने देखा वो सत्य है, सत्य क्या है? तो राजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र को बुलाया कि आप बताओ सत्य क्या है। तो बहुत सुंदर जवाब आता है राजा, उस अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, जो तुमने स्वप्न में देखा वो सत्य नहीं था, तो फिर क्या सत्य है ये? तो अष्टावक्र ने कहा, ये भी सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है, सब बदल रहा है, सब बदलेगा, ये भी ऐसे थोड़ी रहेगा सदा के लिए, तो ये भी सत्य नहीं है। तो फिर राजा ने पूछा, तो सत्य क्या है? तब अष्टावक्र ने कहा कि जिसने दोनों का अनुभव किया, वो स्वप्न का जो अनुभव किया और ये भी जो अनुभव कर रहा है वो सत्य है। अब अनुभव किसने किया, किसने किया? आत्मा ने किया। तो जिसने अनुभव किया दोनों का वो सत्य है, अर्थात आत्मा सत्य है, और न वो स्वप्न सत्य है न ये सत्य है। इसीलिए भक्ति में क्या कहते हैं, ये जगत स्वप्न मात्र है, स्वप्न मात्र है, क्योंकि जैसे है या नहीं है समान है, सब परिवर्तनशील है, सत्ययुग भी बदल जाएगा, अभी कलयुग भी बदल जाएगा, ये भी थोड़ी सदा रहेगा, कोई भी चीज सदा नहीं रहती है, क्षण क्षण सब बदलती रहती है, फिर इस कल्प में यही दृश्य ऐसे वापस नहीं आएगा, ऐसे नहीं आप यहाँ बैठे हैं कि कल भी यहीं बैठेंगे, कल कोई और बैठेगा, भले भट्टी चल रही होगी लेकिन इसी कुर्सी पर इसी सीट पर कोई और होगा, आपका नाम तो नहीं लिखा है ना, जो पहले आया वो पहले बैठा, कल आपने ये ड्रेस पहनी थी आज दूसरी होगी जरूर, तो सब बदल गया। आपका शरीर हर 10 साल के बाद जितनी भी शरीर की कोशिकाएं हैं, सेल्स है, वो सब बदल जाती है, सब कुछ, इसलिए आयु दिखाई देती है चेहरे पर, कोई कितना भी छिपाए, मेकअप करे कुछ भी करे, पता चल जाता है इसकी उम्र कितनी होगी। तो इसीलिए सत्य क्या है, जो अविनाशी है, इसको कहेंगे आत्मा का ज्ञान, मैं आत्मा सत्य हूं, परमात्मा सत्य है, प्रकृति भी सत्य है, लेकिन प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है, भले सत्य है पर सत्य क्यों है? क्योंकि कोई नई नहीं बनती है, कुछ भी चीज कुछ नया नहीं बनता है, किसी में से बनता है। इसीलिए विज्ञान भी कुछ हद तक सत्य क्यों नहीं है, क्योंकि विज्ञान यही कहता है, हम लोग पढ़ते हैं ना, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैटर जो है प्रकृति तत्व, ये कोई एकदम से कोई अचानक नहीं बन जाते हैं और अचानक खत्म नहीं हो जाएंगे, सदा है, लेकिन इट कैन चेंज इज फॉर्म फ्रॉम वन टू द अदर, बट टोटल सम रिमेन्स द सेम। जो टोटल सम होगा वो सेम रहेगा, इक्वेशन दोनों बराबर ही रहेगी, चाहे दोनों में इतना अंतर दिखाई देता है, लेकिन अंतोगते वो समान ही होगा। तभी तो इक्वेशन कहते ना, इक्वल है वो। तो अर्थात प्रकृति भी अविनाशी है लेकिन परिवर्तनशील है, आत्मा भी अविनाशी है लेकिन प्रकृति के संग में आत्मा सतो रजो तमो स्थिति में आती है, भूल जाती है अपने आप को, और परमात्मा जो प्रकृति से परे है वो सदा ही ज्ञान का सागर है। तो ये तीनों का अंतर बाबा ने हमें स्पष्ट कर दिया है, तीनों ही सत्य है लेकिन तीनों के अपने अपने गुण हैं। इसीलिए परमात्मा को कहते हमें सत्य ज्ञान दो, तो भगवान हमें ये सत्य ज्ञान दे रहा है, और बाबा की मुरली में सब कुछ कितना स्पष्ट आता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे ये ज्ञान की पढ़ाई पूरी पढ़ो, कभी क्लास मिस मत करो, ये ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम है। इसी जितना ये ज्ञान जीवन में होगा उतना आपका पद ऊंच बनेगा, वो भी पढ़ाई होती है, जितना पढ़ते हैं उतना पद अच्छा मिलता है ना, पर फिर भी वो विनाशी है और ये अविनाशी है, क्योंकि अविनाशी पद मिलता है। तो ज्ञान जो बाबा ने दिया है ये रूहानी ज्ञान है, जो पहले तो पढ़ना है, सुनते हैं, फिर उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर उसका स्वरूप बनते हैं। अब ये है रूहानियत। ऐसे नहीं बस सुना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। इसीलिए देखो बाबा क्या कहते हैं, विद्या, विद्या की बात आज बाबा ने मुरली में कही, विद्या के लिए गायन है सा विद्या या विमुक्ते, वही विद्या है जो हमें मुक्ति दिलाए। अगर वो मुक्ति नहीं दिलाती विद्या, वो विद्या नहीं है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। तो कौन सी मुक्ति, किससे मुक्ति? दुखों से मुक्ति, रोगों से मुक्ति, पापों से मुक्ति, उससे मुक्ति जो दिलाए वही सच्ची विद्या है। तो वो कौन सी विद्या होगी? वो आध्यात्मिक विद्या है जो भगवान हमको इस समय पढ़ा रहे हैं। और जैसे हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने अंदर धारण करते जाते हैं तो प्रैक्टिकल में उसका अनुभव करते जाते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? वो बीज है, बीज, ये बीज है, सारे शास्त्रों का सार है। कई कहते हैं ना, बाबा की मुरली में आता है, लोग कहते हैं आप लोग शास्त्र पढ़ते हो, तो हम क्या कहते हैं, हमने तो द्वापर युग से कितने शास्त्र पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, दो युग तक शास्त्र पढ़े हैं, अब भगवान हमको सार बता रहे हैं। जैसे सारा साल पढ़ाई करते हैं तो सारे साल की पढ़ाई तो बहुत होती है, सिलेबस तो बहुत होता है, लेकिन जब परीक्षा नजदीक आती है तो सारे साल की पढ़ाई दोबारा थोड़ी पढ़ते हैं, क्या करते हैं? जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको स्टडी करते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आएंगे, ये एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसकी स्टडी करेंगे। तो बाबा भी कहते हैं कि अभी तुम्हारी परीक्षा बहुत नजदीक है। वैसे तो पल पल पर परीक्षा ये होती है, वो परीक्षा तो साल में एक बार आएगी, ये तो पल पल पर परीक्षा है। अंतिम परीक्षा कब आएगी ये पता नहीं, वो परीक्षा की तो डेट फिक्स होती है, दिन फिक्स होता है, स्थान फिक्स होता है कि उस दिन वहां पर जाकर के एग्जामिनेशन देना है, समय फिक्स होता है, तारीख दिन स्थान समय और कितना ड्यूरेशन माना वो सब फिक्स होता है। और इस पढ़ाई में रोज परीक्षा है, पल पल पर परीक्षा है, प्रैक्टिकल पेपर्स है। और वैसे देखा जाए जो अंतिम परीक्षा होगी, जब हाहाकार होगा दुनिया में, वो जो परीक्षा होगी उसके लिए बाबा कहते वो अचानक होगी, वो पहले से नहीं बताया जाएगा, वो अचानक होगी। इसलिए हर वक्त तैयार रहना है, हर वक्त एवर रेडी जिसको बाबा कहते हैं, सदा तैयार रहना है। लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। वो एग्जामिनेशन अभी बहुत समय के बाद आएगा, चलो 11 महीना नहीं पढ़ा, हर जाने एक महीना लास्ट में थोड़ा पढ़ लिया, या 8 दिन चलो एग्जामिनेशन की डेट से 8 दिन पहले पढ़ लिया, हो गया। हम सब होशियार तो 8 दिन के अंदर ही सब कुछ पढ़ सकते हैं, क्या बात है, पता है उनको एग्जामिनेशन में ये पेपर आएंगे, वो स्टडी कर लो बस। लेकिन ये वैसे नहीं है, इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि जो अंतिम पेपर होगा हमारा, वो पेपर एक सेकंड का होगा, ऐसे नहीं 3 घंटे का पेपर होगा, एक सेकंड का पेपर, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव, हाँ या ना उसमें जवाब देना है। और क्या होगा वो क्वेश्चन, एक सेकंड में जीवन मुक्ति, वो सेकंड का आंसर है और नहीं है, आत्मा इस शरीर में है और शरीर में नहीं है, एकदम न्यारी है। एक सेकंड में शरीर का भान एक सेकंड भी न खींचे अपनी तरफ, इसके लिए कितना ये शरीर रूपी वस्त्र ढीला चाहिए। जैसे कपड़े अगर ढीले होंगे तो जल्दी निकाल सकते हैं जब चाहिए तो, और टाइट होंगे वस्त्र तो, हाँ चूड़ीदार पहनते हैं ना, कितना टाइट पहनते हैं बात मत पूछो, कितना टाइम लगता है एक 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 चुन्नट बनाने के लिए, इतना टाइट, और जब निकालने जाओ तो मुसीबत, चूड़ीदार इतना टाइट और फट भी जाता है कई बार, और ढीला होगा तो इतना सहज। तो ये शरीर भी तो वस्त्र है ना, इसको ढीला करना है, कैसे ढीला करेंगे, अशरीरी बन करके, मैं आत्मा इस देह में विराजमान। आज भी बाबा ने कितना मुरली में कहा, ये अकाल तख्त है, ये अकाल तख्त है, पर वो अकाल तख्त तो लकड़ी का है। अमृतसर में जहाँ पर वो गोल्डन टेंपल है उसके पास में एक बिल्डिंग है, वो अकाल तख्त की बिल्डिंग है, वहां पर भी ग्रंथ पढ़ते हैं, और लकड़ी का वो स्थान है, कुर्सी है जहाँ बैठ करके वो तक वो रखा हुआ है और पढ़ते हैं। जो मंदिर के अंदर वो अलग, पर ये अकाल तख्त का भी अलग स्थान है। और बाबा कहते हैं वो तो लकड़ी का तख्त है, पर सच्चा तख्त तो ये आत्मा का, ये शरीर है, ये ब्रिकुटि, ये चेतन तख्त है जहाँ काल आत्मा विराजमान है। तो बाबा हम बच्चों को ये मुरली में जो भी बातें कहते हैं वो प्रैक्टिकल है। तो मैं अकाल आत्मा यहाँ इस तख्त पर विराजमान हूँ और एक सेकंड में न्यारी बन जाऊं। तो ये न्यारा बनने का अभ्यास हर वक्त करना होगा, क्योंकि कभी भी शरीर छूट जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं, एक एक्सीडेंट जो हमारे साथ हुआ था, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। तो हम 3 बहनें पीछे बैठी थी, और ड्राइवर था, और उस समय एम्बेसडर गाड़ी होती थी, तो वो दो आगे बैठे थे और हम मतलब तीन आगे तीन पीछे, तो अचानक क्या हुआ कि सामने कोई व्यक्ति आ गया। देखा नहीं ड्राइवर ने, वो छोटा सा पहाड़ जैसा था और उसके आगे से वो आ गया। उसके सिर पर लकड़ियों का लकड़ियां थी जो जंगल से काट करके ये आदिवासी लोग लेकर आते हैं, तो वो उसके सिर पर थे। अब अचानक क्या हुआ, वो आ गया और ड्राइवर ने देखा नहीं, तो उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की क्योंकि एकदम गाड़ी के पास आ गया। और जैसे ब्रेक लगाई तो शायद एक्सल टूट गया, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। उस समय तो कुछ भी समझ में नहीं आता। और इसने क्या सोचा, ड्राइवर ने गाड़ी को घुमाई तो क्योंकि इसको लगे नहीं, लेकिन उसके पैर को लग गया और पैर को लग गया और वो गिर गया। तो उसके सिर पर जो बंडल था ना लकड़ियों का जो जंगल से काट के आया था, वो उसने छलांग मारी और सीधा गाड़ी के ऊपर वो जो आगे का शीशा था उसको आके लगा और वो शीशा चूर चूर हो गया। और तब तक इसने एक्सल माना वो व्हील जो स्टीयरिंग व्हील थे उसको घुमाया होगा। और एक तरफ खाई थी और एक तरफ पिलर था, वो पिलर को लग सकती थी गाड़ी, खंभा था और या तो खाई में गिर सकती थी। और मैं पीछे बैठी थी, मैं साइड में बैठी थी, मेरे बगल में एक दुबली पतली बहन बैठी थी, लेकिन उस तरफ मोटी बहन बैठी थी, बहुत मोटी बहन, और आगे बैठे थे। अब ड्रामा अनुसार कैसे बाबा ने बचाया, आवाज इतना जबरदस्त हुआ और उसी समय मुझे तो ऐसे लगा जैसे मैं आत्मा अभी शरीर छोड़ रही हूँ, मैं अपना अनुभव सुना रही हूँ। तो मैंने उस समय कहा, बाबा बाबा मैं आ रही हूँ बाबा मैं आ रही हूँ। और एकदम ऐसी अशरीरी हो गई, बिल्कुल इतनी हल्की। अब एक सेकंड की बात होती है, कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं होता है। अब क्या हुआ, ड्रामा अनुसार न वो खाई में गिरी गाड़ी और न पिलर को लगी, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर वो बुशेस थे, छोटे छोटे पेड़ थे, वो जैसे पेड़ होते हैं छोटे छोटे बुशेस जंगल में, तो वहाँ जाकर के वो गाड़ी ऐसे लेट गई, व्हील निकल आया, पता नहीं क्या क्या हुआ। और वो जो छोटी बहन थी मेरे बाजू में वो तो नीचे ही गिर गई, मतलब कुर्सी के नीचे, और जो मोटी थी वो मेरे ऊपर आके गिरी वो मेरे ऊपर गिरी और मैं तो पकड़ा हुआ था, ये आगे की सीट को पकड़ा हुआ था, लेकिन मैंने ऐसे आंखें बंद कर दी एक सेकंड में कि बस बाबा के पास अभी जाएंगे। तो आगे पीछे तो कुछ देखा ही नहीं, लेकिन उसके बाद जब आंखें खुली तो देखा हम तो जिंदा है और वो बहन तो गिरी थी मेरे पर, लेकिन कोई ज्यादा चोट भी नहीं आई थी, कुछ भी नहीं, एक थोड़ी सी खरोच आई थी क्योंकि वो आगे जैसे लगा, बस बाकी कुछ भी नहीं। इतना जैसे बाबा ने अपने गोद में उठा लिया, ऐसे अनुभव हुआ। और देखो कैसे जीना होगा ना, जीना होगा, आपसे मिलना होगा, तभी तो आज यहाँ लेकिन आजकल तो क्या क्या जबरदस्त एक्सीडेंट होते हैं, बात मत पूछो। लेकिन ये बहुत काल का अभ्यास, जो एक सेकंड में आत्मा न्यारी हो गई बस, नहीं तो कितना पता नहीं, लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, डरते हैं, क्या नहीं होता होगा जब ऐसे कोई एक्सीडेंट होता है। परंतु बाबा ने हमें सिखाया है कैसे साक्षी दृष्टा होकर के ये देखना है। तो योग में हम बैठते हैं तो ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं तो कभी मरती नहीं हूँ, मृत्यु का भय तो खत्म हो जाता है, इसलिए ना मृत्यु मां अमृतम गमया, वो ज्ञान हमें दो जो मृत्यु का डर खत्म हो जाए और अमृतत्व का अनुभव हो। तो ये अमृतत्व का अनुभव है, मैं बाबा के पास जा रही हूँ, देह तो है ही विनाशी। तो ये अभ्यास हमारा लगातार रहे, हर कर्म में रहे, इसीलिए बाबा तीन शब्द कहते हैं, एक है देही अभिमानी स्थिति, दूसरी है अव्यक्त स्थिति और तीसरी है अशरीरी स्थिति। अव्यक्त कहो, विदेही कहो और तीसरी है अशरीरी स्थिति। तो देही अभिमानी स्थिति ये हर वक्त कर्म करते हुए अनुभव करनी है, मैं आत्मा आत्मा को देख रही हूँ, ये रूहानियत है, मैं आत्मा आत्मा को देख रही हूँ। और आत्मा आत्मा को देखे उसके लिए क्या जरूरी है, केवल उसको मस्तक पर देखो बस, क्योंकि ये सबका कॉमन है, सबका एक जैसा है। क्योंकि जरा सा मस्तक के नीचे देखा अंतर दिखाई देगा, अंतर दिखाई देगा। क्या अभी मस्तक के नीचे आंखें हैं, तो किसकी आंखें, बिल्ली जैसी आंखें हैं, इसकी ये आंखें, इसकी वो आंखें हैं, हाँ ये आंखें, तो आंखों का अंतर पता चल जाएगा, तो आंखों का डिस्क्रिप्शन देना शुरू करेंगे। और थोड़ा नीचे तो ये कान है, इसका कान मोटा है, इसका कान पतला है, इसका कान सॉरी नाक, इसका नाक मोटा है, इसका नाक पतला है, इसका नाक लंबा है, इसका नाक चोंच जैसा है, मतलब जो कुछ भी हम अंतर महसूस करेंगे, अंतर का वर्णन करेंगे। फिर कान, फिर होंठ, इसका होंठ मोटा है, इसका पतला है, ये अंतर दिखाई देगा, क्योंकि हर एक का अलग अलग चेहरा है। तो बाबा कहते किसी अन्य कोई भाग को देखो ही नहीं, आत्मा को देखना है तो मस्तक पर देखो, हर एक की आत्मा अपने अकाल तख्त पर विराजमान है और ये मस्तक तो फ्लैट है। फिर और नीचे देखो तो और रजोगुण तमोगुण, ये सारी तमोगुण स्थिति आ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं किसी को भी देखो मस्तक पर देखो। जैसे कई चरण स्पर्श करते हैं, बाबा तो कभी अपने चरण स्पर्श नहीं करने देते थे, कभी भी नहीं। कई पांव पड़ते ना, बाबा कभी अपने पांव नहीं पड़ने देते थे। बाबा कहते थे बच्चे बाबा तो आप बाबा ने तो आपको सिर का ताज बनाया है, पांव थोड़ी पड़ना है। मुझे याद आता है रामायण का एक प्रसंग है, रामायण में दिखाते हैं कि जब सीता चुराई गई, अभी लक्ष्मण राम ये सभी जा रहे हैं देखने ये कहाँ गई सीता, तो सीता ने क्या किया था, अपने सारे जो जेवर उसको पड़े थे ना, वो एक एक करके उतारती गई, एक एक ये उतार कान का नाक का ये सब उतारती गई, हार वगैरह जो कुछ पड़ा था वो रावण के उस चुंगल में थी, पर वो उतारती गई ताकि राम देखेगा और उसको पता चलेगा मैं कहाँ हूँ। तो जैसे राम और लक्ष्मण जा रहे थे, पैदल ही जा रहे थे देखने कहाँ गई सीता, तो लक्ष्मण ने एक हार देखा जो सीता का हार था, राम ने हार देखा तो राम ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण ये सीता का हार तो नहीं है? तो लक्ष्मण ने कहा कि मैंने तो कभी उनके गले में देखा ही नहीं, मैंने तो उनके गले में कभी देखा ही नहीं, मैं तो उनके केवल चरणों में ही देखता था। ये तो भक्ति मार्ग में कहेंगे, अब हम किस में देखे, चरणों को देखे या मस्तक को देखे, किसको देखे? हाँ बस मस्तक पर चमकती हुई आत्मा विराजमान है, ये है रूहानी दृष्टि। क्योंकि अगर कहीं और देखा ये जिस्मानी दृष्टि बन जाएगी, देह की दृष्टि बन जाएगी, काम वासना भी जागृत हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसलिए सबको मस्तक पर चमकती हुई एक आत्मा देखो, मणि देखो, वो चमक रही है, ये है रूहानियत। तो ज्ञान एक बीज है और योग उसी ज्ञान का एक स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ ये ज्ञान तो मिला, लेकिन उसकी अनुभूति चाहिए, और अनुभूति कैसे होगी, जब देही अभिमानी बनेंगे। मैं शरीर से अन्यारी हूँ, मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, आत्मा को देख रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, आत्मा बोल रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, आत्मा सुन रही हूँ, ये केवल थियरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। तो जब ये हम अंदर में चिंतन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, अनुभूति करेंगे, ये देही अभिमानी स्थिति होगी। और फिर है विदेही स्थिति, जिस जैसे राजा जनक की स्थिति बताते हैं, सब कुछ करते हुए, महलों में रहते हुए, बहुत सुंदर जगह रहते हुए, लेकिन न्यारा न्यारा, उसमें फंसा हुआ नहीं, एक सेकंड में न्यारा बन सकते हैं, ये विदेही स्थिति है। और तीसरा है अशरीरी स्थिति, जब हम योग में बैठते हैं बिल्कुल अशरीरी, ऐसे नहीं इधर उधर फटक रहे हैं, कभी पैर इधर, कभी पैर इधर, कभी हाथ इधर, कभी ये इधर, ये भी देह अभिमान की निशानी है। इसका मतलब ये भी नहीं कि पत्थर बन के बैठे, पत्थर बन के बैठने की बात नहीं है, वो तो हठ योग करते पत्थर जाके जैसे बन जाते हैं, एक खड्डे में जाकर के बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं, हम तो चेतन है। लेकिन अशरीरी स्थिति, जैसे ये देह है ही नहीं, मैं इतनी हल्की हूँ, जिसको बाबा डबल लाइट कहते हैं, मैं डबल लाइट हूँ, एक तो ज्योति स्वरूप हूँ लाइट, और दूसरा बहुत हल्की हूँ। तो जो हल्की चीज होती है वो तो ऊपर उठती है, तो मैं वो हल्की आत्मा डबल लाइट हूँ, न कोई विकर्मों का बोझ, न पापों का बोझ, न व्यर्थ संकल्प या अशुद्ध संकल्प का बोझ, कुछ भी नहीं, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और वो ऐसी अशरीरी स्थिति बन जाए जैसे बिल्कुल शुद्ध आत्मा, इतनी हल्की, एक बिंदु चमक रहा है, जिसको बीज रूप की स्थिति भी कह सकते हैं, बिल्कुल अशरीरी आत्मा बन गई। तो ये योग की स्थिति है, देही अभिमानी स्थिति ये कर्म में, विदेही स्थिति ये मनसा में, कि सब कुछ करते हुए भी न्यारे बनना, और अशरीरी स्थिति योग में, ऐसी अशरीरी स्थिति हो जाए बीज रूप आत्मा बन जाऊं, एकदम सार रूप बन जाऊं, कहीं भी बुद्धि न जाए, इतनी एकाग्रता हो, क्योंकि उसी एकाग्रता की स्थिति में ही हमारे पाप भस्म होंगे, विकर्म भस्म होंगे। जैसे सूरज की किरणें हैं, वो ऐसे अगर धरती पर पड़ती है तो कोई चीज जलती नहीं है, धरती पर तो सूरज पड़ता है ना, क्यों नहीं किरणें पड़ती, लेकिन वो चीज जलती थोड़ी है। लेकिन वो सूरज की किरणें किसी चीज को जलाती कब है, जब एक कोई कॉन्वेक्स लेंस रख लो और उस कॉन्वेक्स लेंस के आधार से सूरज की किरणों को केंद्रित करो, और जहां वो केंद्र बिंदु बनता है, केंद्र है, वहां कागज रखो तो इतना विशाल सूरज, उसका एक प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन उस कागज पर आएगा, वो इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, पर कितना शक्तिशाली होगा, पूरा सूरज है उस प्रतिबिंब में, और इतना शक्तिशाली जो वहां से आग निकलेगी, आग की लपटें निकलेगी, क्योंकि केंद्रित की न, वो सारी किरणों को केंद्रित किया। तो ये भी मन की एकाग्रता, उस बिंदु में मन ऐसा एकाग्र हो जाए, और उस बिंदु में सिंधु की शक्ति है, शिव बाबा क्या है, बिंदु में सिंधु है बिंदु, लेकिन उसमें सिंधु की शक्ति है, सब गुणों का सार है, सागर है, वो स्रोत है, तो स्रोत से कैसे शक्ति निकलती है। और मैं आत्मा भी इतनी छोटी बिंदु हूं, लेकिन मेरे अंदर 84 जन्मों का इतना बड़ा पाठ है, पर हूं कितनी सूक्ष्म, कई कहते इतनी छोटी सूक्ष्म में कैसे होगा, तो मिसाल देते हैं बाबा आजकल विज्ञान, हाँ इतनी छोटी आपका पेन ड्राइव, आपका चिप, और इसमें कितनी मेमोरी बात मत पूछो, तो इतना छोटा होते हुए भी बहुत शक्तिशाली है। तो मैं आत्मा भी कितनी शक्तिशाली हूं, ये अपने अंदर अनुभव करो। लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं, ये योग नहीं, ये स्थिति नहीं, तब तक आत्मा अपनी शक्ति को नहीं पहचान सकती है। जैसे कोई बहुत बलशाली व्यक्ति है, वो बलशाली बहुत स्ट्रांग है, मसल मैन है, परंतु अगर वो सोया हुआ है, नींद में है, तो उसकी शक्ति भी सोई हुई है। उसको थोड़ी पता है कि मैं वो मसल मैन हूं, एकदम गहरी नींद में है वो। लेकिन जैसे ही वो जागता है, उसको महसूस होता है मेरे अंदर बहुत शक्ति है, पर वो स्थूल शक्ति है। और यहां मैं आत्मा हूं, तो शरीर का भान तो भुलाना है। कितनी बड़ी शक्ति हूं मैं, बेहद शक्ति है मेरे अंदर, अनंत शक्ति है। फिर सारे गुण वो सब बेहद रूप में मेरे अंदर है, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति, कितनी बेहद रूप में मेरे अंदर है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं जो चाहूँ सो कर सकती हूँ, इतनी शक्ति। पर क्या करूँ, ऐसे नहीं किसी को थप्पड़ मारूँ, किसी को गोली मारूँ, मैं जो चाहूँ सो कर सकती हूँ, नहीं। मैं जो चाहूँ माना, मेरे अंदर इतनी विल पावर है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैं वो पवित्र शक्ति हूँ, इसको कहते हैं विल पावर। और जब मैं पवित्र शक्ति हूँ तो मुझे कोई भी हिला नहीं सकता है। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे कोई अशांत नहीं कर सकता है, इतनी मैं मजबूत हूँ। कोई कितना भी कुछ कहे पर मेरी शांति नहीं ले सकता है, मेरी पवित्रता छीन नहीं सकता है, मेरी आंतरिक खुशी कोई नहीं ले सकता है। ये मेरी अपनी निजी चीज है, ये कोई चुरा नहीं सकता है। इतनी अंदर में विल पावर हो, क्योंकि मैं कौन हूं, इसलिए बाबा कहते सदा सोचो मैं कौन हूं, ये योग है। तो ज्ञान क्या है, बीज, और योग है उसी ज्ञान को अप्लाई करो अपने अंदर, और अपने अंदर में वो अनुभव करो। और धारणा क्या है, जैसे पेड़ में से बीज से अंकुर निकलता है, वो समाया हुआ है और वो अंकुर निकलता है क्योंकि पानी दिया तो वो अंकुर निकला, जो उनकी अंदर शक्ति सोई हुई है वो जागी, वो जग गई, और फिर उसमें से पेड़ निकला, और पेड़ जो निकला उस पेड़ में फूल होते हैं, पत्ते होंगे, फूल होंगे। तो जीवन की अंदर जो बाबा धारणा बताते हैं वो इस पेड़ के फूल है, सुगंधित फूल, एक एक गुण बहुत सुगंधित है, उस गुण की सुगंध हम चारों ओर दे सकते हैं, ये रूहानियत है। अपनी आंखों से दे सकते हैं, अपने मुख से दे सकते हैं, अपने हाथों से दे सकते हैं, अपनी चलन से दे सकते हैं वो गुण। इसलिए वो कहते हैं कर्म में, गुण कर्म में आते हैं, गुण सिखाए नहीं जाते हैं। कहा जाता है यू कैन नॉट टीच वैल्यूज, यू कैन नॉट टीच, आप गुण सिखाएंगे क्या, पर यू कैन नॉट टीच, यू कैन नॉट टॉक अबाउट वैल्यूज जस्ट थियोरिटिकली, बिकॉज वैल्यूज आर नॉट टॉट, दे आर कॉट, कॉट टॉट एंड कॉट, कॉट माना पकड़े जाते हैं। हमारा जैसा व्यवहार होगा वैसा हमारा गुण दूसरे को दिखाई देगा और वो पकड़ सकता है, सिखाने से नहीं पकड़ेगा। मैं सिखाऊं कुछ और मैं हूं कुछ और, तो मेरे सिखाने का कोई असर नहीं होगा, है ना। मैं सिखाऊं किसी को कि क्रोध करना पाप है और खुद ही क्रोध कर रही हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उससे क्या कहेंगे, हाँ यही कहेंगे ना, पहले खुद तो मत करो, दूसरों को आप बताते हो। तो वो रूहानियत हमारे हर एक्शन में, हमारे हर बोल में वो स्पष्ट दिखाई देगी, ये धारणा है। हमारी हर सोच में ये धारणा, वो फूल, वो सुगंधित फूल सबको खुशबू दे, सहनशीलता, मधुरता, निर्भयता ये सब दिखाई दे। और फिर चौथा है सेवा, चौथा सब्जेक्ट। और सेवा क्या है? मनसा वाचा कर्मणा सेवा, ये सेवा ही फल है। वैसे कहते हैं करो सेवा तो मिले मेवा, लेकिन बाबा कई बार कहते हैं ये सेवा ही मेवा है, क्योंकि जो सेवा करते हैं थोड़ा भी देते हैं वो सच्चा देवता बन जाता है। देने में जो खुशी है वो लेने में नहीं। तो मैं देवता बन रहा हूं तो दाता बनना है, पहले देना है, देना है, देना है। तो ये जब भावना हमारे अंदर जागेगी यही रूहानियत है, और यही रूहानियत बाबा हमें सिखाते हैं। तो चलिए हम इसका अभ्यास करेंगे, इस रूहानियत का, बिल्कुल अशरीरी बन जाए, ये देहभान एकदम समाप्त हो जाए, न्यारी और प्यारी स्थिति बन जाए। ये लाल सिग्नल ने हमें संकेत दिया कि स्टॉप, सब बातों को स्टॉप, व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप, हिलना डुलना स्टॉप। यहां वहां देखना स्टॉप, अटेंशन। और जैसे अटेंशन किया, आत्मा को संकेत मिल गया बस अभी अशरीरी बनना है। जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र पड़े हैं, ये शरीर से अलग है, उसी प्रकार ये शरीर भी वस्त्र है। जो मुझ आत्मा से अलग है, ये शरीर तो विनाशी है, मैं आत्मा अविनाशी हूं। अजर हूं, अमर हूं, मैं आत्मा इस शरीर के पहले भी थी, इस शरीर के बाद भी रहूंगी। यह जीवन तो एक बहुत लंबी यात्रा का एक पड़ाव है, अब मैं आत्मा इससे न्यारी बनती हूं। अपना ध्यान भ्रकुटी पर विराजमान, मैं ज्योति बिंदु आत्मा यहीं उपस्थित हूं। यही महसूस करें, मैं आत्मा इस शरीर की कर्म इंद्रियों का राजा हूं। मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, मैं नहीं चाहूँ देखना तो देखते हुए भी नहीं देखूं, मैं मालिक हूँ। मैं नहीं सुनना चाहूं तो नहीं सुनूं, मैं कानों की भी मालिक हूं। मैं नहीं बोलना चाहूं तो नहीं बोलूं, मेरा मुख भी मेरे कंट्रोल में है। ये इंद्रियां तो मेरे साधन है, अब मैं इनसे न्यारी होती, एक चमकता हुआ सितारा हूं। कितनी शक्तिशाली हूँ, तेजोमय हूँ, मेरा तेज चारों ओर फैल रहा है। सारे विश्व में मेरी किरणें फैल रही है। शांति की शक्ति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति मुझ आत्मा का मूल स्वभाव है। मैं आत्मा एकदम शांत, निर्संकल्प, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। प्यारे बाबा, आप सर्वशक्तिमान हो, मैं आत्मा आपकी संतान शक्ति स्वरूप, पहचानो अपनी शक्ति को, पवित्रता की असीम शक्ति मुझ आत्मा में है। अति पवित्र आत्मा प्रेम की शक्ति मुझ आत्मा में है। सर्व आत्माओं के लिए निश्चल प्रेम सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व आत्माएं मेरे भाई हैं। दृष्टि अति पवित्र बन गई। सर्व आत्माओं के प्रति रूहानी प्रेम अब मन और बुद्धि उपराम होकर उड़ान भरे। आत्मा मन और बुद्धि से अपने धाम चली जाए। मुझ आत्मा का निज धाम शांति धाम है। जहाँ शांति शांति है कितनी पवित्रता है कितनी शांति है। कितनी शक्ति का अनुभव हो रहा है। महसूस करे आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान कर। कि मैं असल में कौन हूं, शिव बाबा के सानिध्य में उनका नूरी रत्न हूं, शिव बाबा के दिल तख्त नशीन हूं, शिव बाबा का सानिध्य पाकर मैं आत्मा धन्य हो गई। जो पाना था वो सब पा लिया। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आपको पाने से सब कुछ पा लिया। मैं आत्मा बिल्कुल संतुष्ट हूं। तृप्त हूं, भरपूर हूं। निर्संकल्प हूं, कितना आनंद है। परमानंद है। शिव बाबा की लगन में मग्न हो जाए, खो जाए। शिव बाबा का प्यार अनुभव करें।
सुकून मिला है, मन को मिला है चैन, दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला जहाँ